मुश्किल अल्फाज की वजाहत, उनका मादा, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 1, सुबहाना। ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसका रूट क्या है?
बाहा।
सीन बाहा। आपने शाबाश, बिल्कुल सही बताया। सीन बाहा इसके मानी है, क्या मानी है इसके?
तैरना।
तैरना। इसके मानी है तैरना, तैराकी करना, स्विमिंग करना। क्योंकि जब भी बात हो कि इसके मानी क्या है, तो वो लफ्ज जो है वो एग्जैक्ट किस मानी में इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद जो है यहां पे इस्तलाहन इसके क्या मानी मुराद है। ठीक है, तो इसके लफ्जी मानी है तैरना, तैराकी करना, स्विमिंग करना। और जब तैराकी करने वाला तैराकी करता है ना, तो आप देखें कि समंदर में पानी में कोई चीज नहीं होती, बड़ी तेजी के साथ जो है वो बहता है लहरों के बहाव पर, धारों पर। तो सीन बा हा जो है इसके मानी है पाकी बयान करना। कुरान में ये लफ्ज कसरत के साथ अल्लाह ताला की बड़ाई और तमाम उयूब से उसकी पाकी बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला हर नक से पाक है। और वैसे भी ये लफ्ज ताज्जुब और अजीमुशान अमर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे किसी बड़ी बात पर, बड़े वाक्य पर ताज्जुब का इजहार करना हो तो भी, जैसे आप भी कहते हैं सुभान अल्लाह, मैंने ये चीज देखी, सुभान अल्लाह वो इतनी खूबसूरत थी, वो इतनी खूबसूरत है, सुभान अल्लाह फला बात जो है वो कैसी बात थी ना। तो सुभाना पाक है। अल्लाह भी जो है ये मुजक्कर के लिए आता है, इसका ऑपोजिट क्या है? अल्लाह थी। दूसरा लफ्ज है आयत नंबर 1 सूरत बनी इसराइल में असरा, इसका रूट है सीन रा या सीन रा वो। इसके मानी होते हैं रात को ले जाना। वैसे सीन रा या के मानी क्या होते हैं? चलना और रात को सफर करना, वो भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज उसके लिए भी। और एक खास बात जो इसकी है, जो याद रखने वाली है, कि अगर इस रा के साथ बाद में बा और हा की प्रेपोजिशन आ जाए, बा और हा का जो है वो बा का हर्फ जर आ जाए और साथ में ही, यानी किसी कोई जमीर है, किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो फिर मानी होते हैं कि रात को किसी को कहीं ले जाना। अगर सिर्फ इसरा आ गया तो रात को सफर करना, और मसलन जो है वो कोई एक सफर कर रहा है ना, आयशा कर रही है, सलमा कर रही है, सफर किया, लेकिन अगर उसके साथ बेही आ जाए बाद में, तो आयशा किसी और को भी साथ लेकर गई, ये इसके मानी है। तो यहां पे क्या है? असरा वे अब्देही। तो असरा के बाद आपको बा नजर आ रही है ना, और अब्देही ही की जमीर भी आपको नजर आ गई, तो इसरा असरा के साथ जो है बेही जब आ जाए तो रात को किसी को कहीं ले जाना। अल हराम रूट क्या है? हा रा मीम। इसके दो मानी आपने पढ़े थे, जब सूरत अल बकरा पढ़ी थी दो मानी पढ़ाए थे। एक मानी क्या है? इज्जत के, शाबाश इज्जत के। दूसरे मानी है हराम होना। तो इज्जत और फजीलत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और जैसे कोई चीज हराम है तो हुर्मत के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद आप देखें कि मस्जिद आया है दो दफा यहां पे, इसका रूट है सीन जीम दाल, सजदे से है और अपनी पेशानी को जमीन पर टेक देना, ये नमाज का हम रुकन है। अल अक्सा खास लफ्ज है और आप में से बहुत से लोगों का नाम भी है। इसका रूट है पाफ स्वाद वो। इसके जो है एक मानी होते हैं किनारे के और एक मानी होते हैं दूर के। अच्छा अब देखें कि जैसे किसी किनारे की बात हो, तो किनारा आमतौर पे दूर होता है ना, किसी भी चीज का किनारा। जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो किनारा जो है वो एक साइड पर है। तो बहरहाल ये लफ्ज जो है किनारे के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा दूर के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अक्सा से मुराद बैतल मकदस है, अल कुदुस या इलिया ये फिलिस्तीन में एक शहर का नाम है, वहां पे बैतल मकदस वाकया है, और मक्का से बैतल मकदस का जो सफर है, बैतल मकदस की जो मुसाफत है, वो 40 दिन की है, 40 दिन रात की। तो 40 दिन रात का सफर है, तो कितनी मुसाफत हुई, बहुत दूर की मुसाफत हुई, तो इसलिए बैतल मकदस का नाम ही जो है वो क्या पड़, उसको कहा जाता है मस्जिद अक्सा, दूर की मस्जिद। हौलहू या को आता ही है हॉल, इर्द गिर्द को कहते हैं, इसी से माहौल, इर्द गिर्द का जो जो कुछ इर्द गिर्द में है। लिमुरियाहू, रूटवर्ड क्या है, रा हमजाया, आयातीना, क्या रूट है, हमजा या अय्यू से है, हमजा या अय्यू से है, और आयत वाहिद है, आयातीना इसकी जमा है। असमीउ रूट क्या है, आप सबकी मुझे आवाज आनी चाहिए, जब आपको जो लफ्ज आता है आप सब बावाजे बुलंद बोले, ताकि इस तरह आपको अपना अंदाजा भी होता जाएगा, और ये आसान लफ्ज है। अल बसीर, शाबाश। अतैना रूट क्या है,
गलत,
हमजा ताया, हमजा ताया। अच्छा यहाँ पे दूनी खास बात है, ये पूछ लेती हूँ आपसे, दाल व नून इसकी खास बात क्या है, ज़वेल अज़दाद में से है, और ज़वेल अज़दाद के मानी क्या होते हैं कि ऐसा लफ्ज जो बयक वक्त ऑपोजिट मानी रखता है, ये लफ्ज आगे पीछे ऊपर नीचे इसके अलावा इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जुर्रियता, ये आयत नंबर 3 में है सूरत बनी इसराइल, इसका रूट क्या है, जाल रा, ये छोटी छोटी चूंटियों को भी कहते हैं, और चूंटियां रींगती हैं, चलती हैं, और बड़ी तेजी से उनकी नस्ल भी बढ़ती है ना। तो बहरहाल जुर्रियत का लफ्ज औलाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, औलाद जो है जैसे चूंटियों की तरह रींगती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। फिर इसके बाद आप देखिए शुकूरा, जैसे मेरी दो स्टूडेंट हैं फरजाना शुकूर और रेहाना शुकूर, है ना, तो बहुत से लोग ये नाम इस लगाते हैं, और शुकूर जो है असल में अब्दुल शुकूर, तो बहुत ज्यादा कदरदान का बंदा है ना, अब्द फिर साथ लग जाता है, अमत बाज लोग साथ लगा लेते हैं, और शीन का फ्रा के लफ्जी मानी है उमड़ आना, जैसे चश्मा जो है वो फूटता है उमड़ आता है ना, आंख जो है, जैसे आज मैं सुबह से जब कुरान पढ़ रही थी, और कुरान के अंदर जो एक लज्जत है, जो इसके अंदर एक लुत्फ है, जो इसके अंदर एक मजा है, तो दिल जो है वो अल्लाह के शुक्र के एहसास से लबरेज होता है, अजब किस्म की एक जो है वो कैफियत सुरूर की इंसान के अंदर पैदा होती है, और इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं ना? तो आंख से आंसुओं का बह निकलना शुक्र के एहसास से, ये उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐनुन शाकिरा, और इसी तरह जो है वो यानी चश्मे को भी कहते हैं और आंख को भी कहते हैं, तो उसमें से आंसू जो है वो खुद ब खुद आंख से जैसे निकलते हैं, चश्मा भी इसी तरह उससे जो है उमड़ता चला जाता है। इसी तरह अरबों के यहाँ एक मशहूर मुहावरा है जो मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ आपको याद हो जाए, हुआ अशकरु मिन बुरूक, और बुरूक जो है अरबों के यहाँ एक ऐसी घास होती थी, थोड़ी सी बारिश मिलने पर वो तेजी से फलती फूलती थी, तो वो शख्स जो है वो बुरूक घास से भी ज्यादा शुक्रगुजार है, तो वो शख्स जिसको नेमते मिले और वो अल्लाह का शुक्रगुजार हो, तो उसको कहा जाता है हुआ अशकरु मिन बुरूक, के फलां शख्स वो तो बरूक घास से भी ज्यादा शुक्र गुजार है। और आमतौर पर इंसान की फितरत क्या है, बड़ा ही न शुक्रा है। शुकूर का ऑपोजिट क्या है, कफूर। कफूर कदैना, कदैना जो है ये आप पहले भी ये लफ्ज जो है वो पढ़ चुकी हैं, काफ द्वाद या, और इसका मतलब होता है फैसला कर देना। काजी क्या करता है, फैसला कर देता है किसी चीज का ना। वह कदैना और हुक्म दे दिया और फैसला कर दिया। बनी जो है ये असल में क्या था, बनीन था, बनीन था, बेटों को कहते हैं ना। और इसका रूट है बानून व, और बानून या के बाद का जो नून है वो गिर चुका है। ये इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी और सेहत दी, ईमान से अल्लाह ताला हम सबको नवाजे इंशाल्लाह 2011 सितंबर में इंशाल्लाह ग्रामर की क्लास शुरू करेंगे। तो उसमें आपको फिर ये पता चलेगा ये आता क्यों है, ये जाता क्यों है, ये गिरता क्यों है, होता क्यों है। तो कुछ अरसे में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसको शुरू करेंगे ग्रामर की क्लास। आप अभी से नियत कर लें कि मुझे अच्छे तरह से कुरान को पढ़ना है। अच्छा, लतुफ सिदुन्ना, फासीन दाल इसका रूट है। फसाद जो है दो तरह का होता है, मादी भी और हिस्सी भी। जैसे किसी को कत्ल कर दिया जाए ये मादी मिसाल है, नजर आ रहा है ना, कत्ल हुआ हुआ खून बह रहा है नजर आ रहा है। और हिस्सी ये होता है जो आप महसूस करें, नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। जैसे किताबों के जरिए से किसी के अकायद जो है खराब कर देना, जैसे आजकल है परवेजी फिरका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी लोग कहते हैं अहमदी फिरका है कि नबी जो है वो है ना। या फिर ये कि कुरान के अंदर तब्दीली पैदा कर देना, इस्लाम के अहकामात में चेंज कर लेना। तो हिस्सी लिहाज से जैसे जिक्र फिक्र में तब्दीली पैदा करना। अल अर्द ये इस्म जिन्स है, इसकी वजह से जमा अर्दीन भी आती है, लेकिन अल अर्द वाहिद है, इस्म जिन्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। मर्रतुन वाहिद है और मर्रतैन दो बार के लिए आता है। रूट है मीम रा रा। वलतालुन्ना इसका रूट है ऐन लाम वाव। ऐन लाम वाव इसके मानी होते हैं किसी चीज का बुलंद होना, किसी चीज का आला होना। और ये सरकशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शैतान ने अल्लाह के मुकाबले में सरकशी की, अल्लाह की अताअत ना की, तो उसने क्या किया कि वो अल्लाह का नाफरमान बन गया है ना। और वैसे ही अल्लाह की सिफत ताला। अच्छा, बाद लोग नाम भी रखते हैं, उलिया और सुफला, आपने तजवीद में पढ़ा था ना, सनाया उलिया और सनाया सुफला, ये इसी की फैमिली का लफ्ज है। अच्छा, अरबी जबान को जब याद करने लगे आप, जैसे कि आप तजवीद रूट और सारा जो कुछ याद करती हैं, आप एक बात याद रखें कि जब एक लफ्ज आप पढ़े आप जरूर सोचें कि इसकी फैमिली के और लफ्ज कौन कौन से हैं। इस तरह वो चीज पक्की हो जाती है, भूलती नहीं है, शेप बदल जाते हैं ना। जैसे मैं अक्सर ये मिसाल दिया करती हूँ कि दूध है और दूध के अंदर आपने दही डाला तो दूध के अंदर आपने उसकी जाग डाली, दही डाला तो दही बन गया, फिर आपने उसको उसमें मदानी चलाई, मक्खन अलग हो गया तो लस्सी बन गई है ना। और अगर आप उसके अंदर जो है वो खुश्क दूध डालकर कुछ बनाना चाहती हैं तो वो रस मलाई वगैरह बन जाती है, अगर आप उसमें चावल डालती है तो खीर बन जाती है, चावलों को पीस लेती हैं तो फिरनी बन जाती है। आपको सब चीजें पता है कि इसकी शक्ल तब्दील होकर क्या क्या चीजें बननी है। फिर आपको कस्टर्ड भी पता है बनते हैं, बनता है और पता नहीं आपको बहुत ज्यादा आता है, मुझे पता है। आपको ये सब शेप समझ में आती है जो चेंज हो रही है। एक ही कपड़ा है उससे आप कमीज भी सी सकती हैं, आप उसे स्कर्ट ले सकती हैं, आप उसे फ्लैपर बना सकती हैं, आप उसे दुपट्टा बना सकती हैं, बेडशीट बना सकती हैं, तकिए का गिलाफ, आप उसको कई शक्लों में तब्दील करती हैं। आपको सब समझ में आता है ना। तो अब इन की तरफ अपने जहन को फोकस करें कि आपको इसकी चेंज समझ में आए। तो अब आप देखें कि यहीं पर इसकी फैमिली के दो लफ्ज हैं, एक क्या है वला तालुना, दूसरा क्या है उलूवन, और एक इसकी फैमिली का लफ्ज आप और नोट कर लें, जैसे ताला, इसी तरह आला, इसी तरह आलिया लोग नाम रखते हैं, इसी तरह उलिया है ना, इसी तरह तालो आपने पहले पढ़ा था हाँ, कि किसी को बुलंद मकसद की तरफ बुलाना तालो। तो आपका जो एग्जाम होगा ना इस सूरत का, बनी इसराइल का और कहाफ का इकट्ठा, इसमें एक लफ्ज देंगे, ये भी आप क्वेश्चन पेपर में आपको साथ साथ बताती रहूंगी, आप सवाल नोट करते जाएं, आप ही से पूछूंगी क्या क्या आएंगे चीजें, तो एक ये होगा कि आपको एक लफ्ज दिया जाएगा, कहा जाएगा इसकी फैमिली के लफ्ज बताएं, तो आपको उसकी फैमिली के लफ्ज आने चाहिए। और इसका मकसद क्या है कि जैसे किसी को भी कहा जाए कि ये चीज है तो इससे जोड़कर आप मुख्तलिफ चीजें बनाएं, क्या क्या शेप बन सकती हैं, है ना। आपके यहाँ ऐसे पजल चीजें होती है ना, कि एक जैसे ब्लॉक है, बच्चे खेल रहे हैं ऐसे ब्लॉक देके, अच्छा इसे आप क्या क्या बना सकते हैं, वो स्टेयर्स स्टेप्स बना सकते हैं, वो घर बना सकते हैं, वो डॉल हाउस बना सकते हैं, वो हजारों चीजें बच्चे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक गेम की तरह भी होगा ताकि आपकी सूझबूझ में इजाफा हो। अच्छा, आयत नंबर 5 है, वादू, वादे के लिए इस्तेमाल होता है, आप पढ़ी चुकी हैं, ऊला, ऊला हुमा। ऊला जो है ये पहले को कहते हैं, उखरा दूसरे को कहते हैं, है ना। और हुमा जो है ये तस्निया का सीगा है, हुमा कुमा, कुमा भी तस्निया का सीगा है, का कुमा कुम, का वाहिद है मुजक्कर के लिए आता है, कुमा दो के लिए आता है तस्निया का सीगा है, कुम सब के लिए आता है, और की मुअन्नस के लिए आता है एक के लिए, जैसे पेरे के लिए आता है ना, और कुमा तस्निया का सीगा एक जैसा है मर्दों औरतों के लिए दोनों के लिए। तस्निया पता है ना किसे कहते हैं, मुझे प्यार से देखें अच्छा, और कुन्ना जो है ये औरतों के लिए आता है, जमा का सीगा है, कुम मर्दों के लिए आता है जमा के लिए, और कुन्ना औरतों के लिए आता है जमा के लिए, और कुमा तस्निया का आता है। और जैसे तुम दोनों जैसे, और इसी तरह हुमा हूं, हिया हुमा हुन्ना, ये भी एक मतलब गर्दान है, ये भी एक वजन है। और कुमा का आमतौर पे जब इस्तेमाल करते हैं, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, सामने वाले के लिए करते हैं, जब हा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, तो जैसे अभी वो कमरे में कुछ लोग स्टूडेंट है बैठे हुए पढ़ रहे हैं, उनके लिए उसका, उस एक औरत का, जैसे नुजत की बात है तो उस एक औरत का, नुजत और शियाना दोनों है तो उन दो औरतों का हुमा आएगा, और अगर अंदर बहुत से हमारे जैसे स्टूडेंट बैठे हैं तो हुन्ना सब औरतों के लिए आएगा। अब बहुत से मर्द नीचे बच्चे बहुत से कुरान हिफ्ज कर रहे हैं तो उन सब के लिए हुम आएगा, तो वो दूर है हमें नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो बहरहाल आप अब ये समझ आपको आनी चाहिए, अब आपके कुम नजर आया ना आपको, तो ये गर्दान भी याद करनी है। दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया है उसका, यानी उसके अंदर आएगा हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। रदना ये आता ही आपको, है ना, क्या रूट है इसका, रा दाल दाल, रद्द करना। अल कर रहा था, अच्छा आप परेशान ना हो, कर रहा था लफ्ज जो है ये आयत नंबर 6 में है, और इसका रूट क्या है, काफ रा रा, कर रहा था। और इसके मानी क्या होते हैं, कर रहा था के गलबे को कहते हैं, बारी को कहते हैं, उर्दू में भी आप कहती हैं तकरार, तकरार और मुकर्रर, है ना, दोबारा दोबारा, तो कर रहा था बारी और गलबे के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद है इसी में वह अमदद नाकुम, तजवीद आपको आती है ना, मद मीम डाल डाल, लंबा करना खींचना, तो इसी से मदद होती है, किसी की मदद करना। भी अमवालिन, अमवालिन जो है इसका वाहिद क्या है, माल, इसका रूट क्या है, तो इसका रूट है मीम वाओ लाम, किसे कहते हैं, दौलत को कहते हैं, माल और दौलत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। माल वाहिद है, अमवाल इसकी जमा है, बनीना, बनीन जमा है, इसका वाहिद क्या है, बनू रूट है, बानून वो इसका रूट, और इसका वाहिद है इब्न, बिन बिन भी कहते हैं, खालिद बिन वलीद, वलीद का बेटा खालिद। अच्छा आपका जो एग्जाम होगा ओरल, उसमें वाहिद जमा भी आएंगे इन्हीं दो सूरतों के अंदर, वाहिद जमा मुजक्कर मुअन्नस, जो जो आप पढ़ती जाएंगे आप आते जाएंगे, तो बनीना इब्न वाहिद है, बनीन इसकी जमा है, रूट है बानून वो। वजअलनाकुम जीम ऐन लाम जाला बनाना, अक्सरा, अक्सरा जो है इसकी खास बात क्या है, ये सम तफ़ज़ील है, असल में उसका वजन होता है अक्सरू, अफलु के वजन पर आता है ना, रा के ऊपर पेश होती है, सुपरलेटिव डिग्री के मानी देता है, जैसे अकबरू, अक्सरू, असगरू। और आप पहले भी बहुत दवा आलमू, पहले भी ये लफ्ज बहुत दवा पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि फिर रा के ऊपर जो है पेश क्यों नहीं है, तो आराब भी तब्दील हो जाते हैं बाज औकात, इसके अंदर ही कोई ऐसी चीज आती है, हरूफ ऐसे आते हैं या ऐसी चीज आती है कि जिससे आराब तब्दील हो जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह ग्रामर में पढ़ेंगे। तो अक्सरा असल में अक्सरू तो ज्यादा के लिए आता है, किसी की निस्बत ज्यादा। जैसे इंग्लिश की मैं मिसाल दिया करती हूँ कि एक सबसे पहले अच्छी चीज के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, दूसरे नंबर पर क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, गुड आएगा, फिर क्या आएगा, बेटर, फिर क्या आएगा, बेस्ट। तो अगर मैं आपको कहूँ कि बेस्ट, तो आप समझ जाएंगी ना कि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा। जैसे मसलन जो है ये तीन जो है वो किसी ने तीन मेरे पास इस वक्त पेपर है, और एक पेपर के बारे में ये कहती हूँ कि जो सबसे कमजोर है बेहतर है उसको मैं क्या कहूंगी, गुड है। जो सेकंड नंबर पर है उसको क्या कहूंगी, बेटर है। जो थर्ड नंबर पर उसको क्या कहूंगी, बेस्ट है। तो बस अब आज बेस्ट को अरबी में याद करने के लिए इतना ही याद रखें, जो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि कुरान में या अरबी में जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ये अफलू के वजन पर आता है। अफलू मैंने आपको एक वजन दे दिया, एक पैमाना दे दिया है, अफलू इसके वजन पर आएगा। अब जितने भी लफ्ज होंगे ना वो इसी वजन पर आप परखेंगी, और मसलन अकबरू, आलमू, असगरू, अंसरू, तो यहां पे क्या है, अक्सरा है, रा की हरकत तब्दील वैसे हुई हुई है। फिर है नफीरा, नून पा रा, नून पा रा जो है ये नफरी को कहते हैं, लश्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमात के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसका रूट है नून फा रा। अच्छा, आयत नंबर 5 जो थी वो रह गई थी, मुझसे मिस हो गई, तो मैं उसको अब शुरू करती हूँ, आयत नंबर 5 को। और इसमें आप देखें कि वादु उला हुमा, हमने उला हुमा को पढ़ लिया था, बासना, इसका रूट है बा एंसा, इसकी फैमिली का लफ्ज बेसत, मबूस, अरबी के लफ्ज है बेसत, मबूस। और आप बायस, बायस लफ्ज भी इस्तेमाल करती है ना उर्दू में, फलां चीज उसका फिर बायस बन गई, और इसके मानी क्या होते हैं, बासा के भेजना, मबूस करना, इबादन, इबाद का वाहिद क्या है, अब्द, और यही इसका रूट भी है, उली बासिन, और उली जो है ये वाले के लिए इस्तेमाल होता है, उला भी आता है, उलू भी आता है और उली भी आता है, ठीक है। बासिन जो है ये इसका रूट है, मादा है, इसके मानी जंग के भी होते हैं, भूख के भी होते हैं। शदीदिन इसका रूट है शीन दाल दाल, सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है, और उर्दू में कसरत से आप इसको इस्तेमाल करती हैं, भूख शदीद है, सर्दी शदीद है, गर्मी शदीद है, शिद्दत है ना। फजासू, और फजासू का लफ्ज आप पहले पढ़ चुकी थी, और लेकिन ये कि चलें आप भी क्या याद रखेंगी कि सखी से पाला पड़ा था, कहाँ पढ़ा पीछे आपने, सूरत यूसुफ में मैंने आपको पढ़ाया था, फतहससू का जब ऑपोजिट बताया था तो उसमें है ना तजस्सुस, उससे पहले भी आप पढ़ चुकी होंगी यकीनन, लेकिन चले सूरत यूसुफ तो याद है ना, पिछले दिनों ही पढ़ा था। तो बहरहाल फजासू जो है इसका रूट है जीम व सीन, इसके मानी है घुस जाना, और जो एक होता है तहसस, बैरूनी तौर पर टो लगाना, तहसस, तजस्सुस होता है अंदरूनी टो लगाना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं। ऑपोजिट आपने भी याद रखना है, जो इस सूरत में पढ़ेंगी इन सूरतों में ऑपोजिट भी आने चाहिए, तभी कुछ बनेगा, तहस्सस और तजस्सस। खिलाल, खा लाम लाम, आप क्या करती हैं, खिलाल करती हैं आप लोग, کرتے ہیں کبھی کبھی، کسے کہتے ہیں خلال؟ دو دانتوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے نا، تو آپ کھانا کھانے کے بعد اگر گوشت اس میں پھنس جائے تو آپ جو ہے وہ کیا لیتی ہیں؟ ٹوتھ پک لے کر، تنکا لے کر آپ اس کو جو ہے وہ اندر سے نکالتی ہیں. اسی طرح وضو کرتے وقت دو انگلیوں کے درمیان آپ انگلی کو مارتی ہیں اور خلال کرتی ہیں. تو خلال کا لفظ جو ہے یہ جیسے اندر کے لیے، درمیان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی فیملی کا بڑا معروف لفظ ہے خلیل. خلیل، خلیل اللہ کس کا لقب تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور کسی کی محبت کا دل کے اندر سرایت کر جانا، اس کے لیے بھی آتا ہے خلا، خلیل. اور وہ اللہ کے بڑے ہی پیارے تھے. الدیار، دیار جو ہے یہ شہروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ دار. شاباش، دار اس کا جو ہے وہ وہ ہے واحد، اور دیار اس کی جمع ہے. اس کا روٹ کیا ہے؟ شاباش، دال و راج کا روٹ ہے. وکانا وعدا مفولا، کانا کا روٹ کیا ہے؟ کاف و نون. الحمدللہ. مفولا کا کیا ہے؟ فا عین لام، فیل کو کہتے ہیں. تو آیت نمبر 6 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب آیت نمبر 7 پر آ جاتے ہیں. ان جو ہے یہ حرف شرط ہے. ان، جیسے اردو میں آپ اگر کہتی ہیں نا، ان. تو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے کے لیے ہے. اچھا، نفس کا لفظ عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ہا کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے. تو آسن تم جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ شاباش. آسا تم کا روٹ کیا ہے؟ سین و حمزہ. مجھے آواز نہیں آئی. آسا تم کا روٹ کیا ہے؟
سین و حمزہ.
اساتم کا روٹ کیا ہے؟ شاباش. یہ یسو، یہ یسو، سین و حمزہ، لیکن شکل چینج ہے نا اس کی. اچھا، اس کی فیملی کے لفظ کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. آپ نے سورۃ المائدہ میں اس کی فیملی کا ایک خاص لفظ پڑھا تھا، جو دو بھائیوں کا واقعہ تھا نا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تھا تو سوات، سوات ان شرمگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لاش کو بھی کہتے ہیں نا، شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ شرمگاہ جو ہے اس کو ہم چھپاتے ہیں نا، برا لگتا ہے کہ پرائیویٹ پارٹ ننگا ہو. اسی طرح لاش پڑی ہوئی ہے تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اگر اس کو کور نہ کیا جائے، تو اس کو کفن دفن کر کے دفن کر دیا جاتا ہے نا. تو سوتن اور سو، سیئتن واحد، سیئات اس کی جمع ہے. اور یہاں پہ آپ نے اساتم پڑھا، لے یسو. تو آپ اس کی آپ کوشش کریں، دس لفظ جو بھی لفظ آپ، کیونکہ آپ 15ویں پارے پہ آپ ہے نا، تو میں 20 نہیں کہہ رہی. اور میں آپ ٹرائی کریں، دیکھتے ہیں کتنے کے 10 بنتے ہیں نا. تو 10 لفظ ٹرائی کریں گی تو بہت ہی آپ کو خود ہی فائدہ ہوگا. اور مقصد کیا ہے کہ پچھلی بھی ریویژن ہوگی، مثالیں آپ نکالتی چلی جائے. آیت نمبر 7 ہے، اور اس میں نیا لفظ ہے والے یتبرو تتبیرا. اس کا ایک ہی روٹ ہے، اور اس کا روٹ ہے تابا را. تابا را جو ہے یہ کہتے ہیں ہلاک کر دینا، خوب کچل کر کسی کو تباہ کرنا، ایسے تباہ کرنا کہ ویران کر دینا، اجاڑ دینا. والے یتبرو تتبیرا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسا کا لفظ آیا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے وہ کبھی تو شاید کا کیا جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ امید ہے، اور کبھی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بعید نہیں. امید ہے، بعید نہیں، اس طرح اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو موقع کی مناسبت سے آپ یہ ترجمہ کر سکتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ لفظ جو ہے وہ یاد ہو. اور اس کا روٹ یہی ہے، عین سین یا، عین سین یا. ये आयत नंबर 8 में है उत्तम उदना, तो क्या ये दोनों जो है इन दोनों का रूट एक हो सकता है? शाबाश, एक ही रूट है। रूट क्या है? ऐन बौदाल, ऊद, जैसे है ना ऊद कराना, पलटना, रिपीट करना किसी चीज को। हसीरा, हा स्वाद रा, हसीर जो है ना ये कैद खाने को कहते हैं, और जैसे जानवरों का एक बाड़ा होता है ना जिसमें सारे जानवरों को बंद कर दिया जाए, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और हसीर आप इससे भी कर सकती हैं कि फिर जो है पुलिस ने मुजरिमों की नाकाबंदी कर ली, हिसार कर लिया, हिसार, हिसार बंदा होता है ना, तो उसी से हसीरन है। तो बाड़ा जिसमें जानवरों को बंद करते हैं, या कैद खाना जिसमें मुजरिमों को बंद करते हैं, या वैसे किसी का घेराव कर लेना, हिसार कर लेना। अकवामू, अकवामू अबू मैं अभी मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ एक लफ्ज बताया है, तो ये किसके वजन पर आएगा? अफालू के वजन पर आएगा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अफालू, अफालू के वजन पर, अब आप देखे पीछे ही हमने अक्सरू पढ़ा था, वैसे अक्सरा लिखा है लेकिन वो अक्सरू है, इसी तरह अकवामू, तो ये भी सम तफसील है। तो बेस के मानी ये देता है अकवामू, है ना, बेस के मानी। अब इसका फिर आप तर्जुमा जब करेंगी तो क्या तर्जुमा करेंगी अकवामू का? सबसे ज्यादा सीधा, सबसे ज्यादा सीधा, सबसे ज्यादा ठीक सीधा। कबीरा का रूट क्या है? काफ बारा। आयत नंबर 10 है सूरत बनी इसराइल, लफ्ज है आकदना, क्या रूट है इसका? आयन दाल दाल। ये जो ता है ना, ये खास आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्रामर में, कुछ औजान है, कुछ वजन है, बाब, अब बाब कहते हैं उसको, वो भी आपने नहीं पढ़े। उस जब मुख्तलिफ बाजों का एक लफ्ज किसी खास जब बाब में जाता है ना, उसमें जाकर उसके अंदर ये ता आ जाती है, बाबे इस्तेआल, उसमें फिर खास मानी पैदा हो जाते हैं। तो खैर हमारा इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो, आप समझे, आपने सुना ही नहीं मैंने जो भी बात कही थी। अब आप खुश हो गए, बस मुझे आपको मुस्कुराते हुए देखना है। तो आतदना, इसका रूट क्या है? ऐन दाल दाल। अड्डा या उद्दू, ये लफ्ज गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, गिनने के लिए, किसी चीज को गिनकर रखना। और आतदना अगर आएगा ना, तो किसी चीज को यानी खूब तैयारी और एहतमाम से किसी चीज का इंतजाम करना। वैसे तो आपने किसी चीज को गिन लिया, लेकिन क्योंकि तावीज के अंदर आ गई है, हुरूफ की ज्यादती मानी की ज्यादती पर दलालत करती है, तो किसी चीज का जो है वो एहतमाम करना, एक एक चीज जो उसकी है उसका इंतजाम करना ना, तो आतदना, तो यहाँ पे आतदना है। तो अल्लाह ने खूब तैयार कर रखा है जहन्नुम को, खूब उसके लवाजमात के साथ, दर्दनाक अजाब के साथ। अलीमा जो है, ऐसे भी हो सकता है कि आपको ट्रैक करने के लिए, जैसे अब अलीम और अलीम मिलते जुलते हैं, है ना, और आप पढ़ेंगी, आपने हसीरा पढ़ा ना, तो हसर और हसर, ये भी दोनों लफ्ज इसमें आए, अभी मेरे ज़हन में आए हैं। अब आगे जाके देखेंगे तो हासीन रा भी है और हास्वाद रा भी। आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों में फर्क क्या है। तो फायदा क्या है कि आप समझेंगी, आपको आएगा। और अजाबुन आइन गालबा, अजमुन के मानी होते हैं चखना। हाजा अजबुन फुरात, ये मीठा पानी है। तो बहरहाल अजबुन चखने के लिए भी आता है, और अलीमा दर्दनाक को कहते हैं। उर्दू में आप बड़ी कसरत से इस्तेमाल करते हैं, उसकी कहानी बड़ी अलमनाक थी, बड़ी दर्दनाक थी। आयत नंबर 11,